بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو چل رہی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے متعلق. اس میں پہلی بات سامنے آ گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات 5374 کے قبیل تقریباً ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 700 مروی ہے. اس کے باوجود بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ شاید میرے مقابلے میں حضرت عبداللہ کی احادیث مرویات زیادہ ہو. تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بتلائی گئی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع شروع میں حدیث لکھنے کا معمول نہیں تھا, وہ زبانی طور پر احادیث یاد کرتے تھے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے حدیث لکھنے کا اہتمام کرتے تھے. تو وہ چونکہ شروع سے لکھنے کا اہتمام کرتے تھے, انہوں نے شروع ہی سے احادیث کو لکھنے کا معمول بنایا تھا, اس لیے ان کو ایسا لگا کہ عبداللہ ابن عمر کے پاس احادیث زیادہ ہے اور میرے پاس احادیث کم ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کا اپنی حدیثوں کو کم گرداننا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث کو زیادہ شمار کرنا کتابت کی وجہ سے, لکھ لینے کی وجہ سے. چنانچہ مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا معمول تھا کہ حدیث سنتے فوراً لکھ لیتے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں لمبے زمانے تک انہوں نے حدیث لکھنے کا معمول نہیں بنایا تھا, بعد میں چل کر کے انہوں نے حدیث لکھنے کا معمول بنا لیا تھا. دوسری بات, حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر میں تھوڑا سا تقابل کر لیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقلاً مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے, اس لیے ان کی مرویات کی تعداد زیادہ ہو گئی, اس لیے کہ مدینہ مرکز ہے, لوگ آتے جاتے ہیں, حدیث سنتے سناتے ہیں, اس لیے ان کا جو ہے مدینۃ المنورہ کا قیام یہ حضرت ابو ہریرہ کی احادیث کے زیادہ ہونے کا ذریعہ بن گیا. جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پہلے طائف رہنے چلے گئے اور بعد میں مصر منتقل ہو گئے, اس لیے ان کی مرویات کی تعداد کم ہو گئی. دوسرا تقابل, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سننے سنانے کا مستقل مشغلہ بنا لیا تھا, جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر میں عبادت کا ذوق غالب تھا, وہ زیادہ عبادت میں رہتے تھے, اس لیے ان کی مرویات کی تعداد کم, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستقل مشغلہ احادیث سننے سنانے کا इसीलिए उनकी मरवियात ज्यादा। नंबर तीन, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर मन कज़ब अलैय मुतअम्मिदन से बहुत डरते थे। मन कज़ब अलैय मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो वईद आई रिवायत में उससे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर बहुत डरते थे और मारे डर के बहुत एहतियात से कम हदीस सुनाते थे। जबकि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मिली थी, इसीलिए वो अहादीस को याद कर कर के लोगों को बहुत सुनाते थे। अबू हुरैरा के साथ हुजूर की दुआ, इसीलिए हदीसें इनको बहुत याद बहुत सुनाते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर डरते थे कि कहीं बेएहतियाती में झूठी बात हो गई तो बफलियत अबाउआ मकादाउ मिनन्नार के मिस्दाक बन जाएंगे, इसलिए वो एहतियात से कम सुनाते थे। एक चौथी बात समझो, यरमुक के मौके पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर को एक सहीफा मिला था, वो सहीफे में से भी कुछ बातें वो लोगों को सुनाया करते थे। कोई सहीफा मिल गया था, उसमें से भी कुछ बातें वो सुनाते थे, इसलिए लोगों ने उनसे हदीस लेने में एहतियात बरता कि ये तो यरमूकी सहीफे से भी कुछ बातें सुनाते हैं। जबकि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हु खालिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ही सुनाते हैं, उसके अलावा और कोई चीज नहीं सुनाते। इन वजूहात की बुनियाद पर हजरत अबू हुरैरा की मरवियात ज्यादा हो गई और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र की मरवियात कम रह गई। 800 के करीब ताबेईन ने हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत को नकल किया है। बहरहाल इस कॉल को लाने का मकसद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ इस रिवायत को लाए हैं वो इस मसले के लिए लाए हैं कि हदीस शरीफ लिखने का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में था। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर बिन आस रदी अल्लाहु ताला अन्हों के पास अहादीस लिखी हुई थी और उस लिखी हुई अहादीस का एक मजमुआ था, उस मजमुए का नाम इन्होंने रखा था अस-सहीफ़तुस-सादिका, उसका उस मजमुए का नाम था इनका, और उस मजमुए के अंदर वो अहादीस लिख लिया करते थे। गोया हुजूर के मुबारक ज़माने में ये पूरा रिसाला मुरत्तब हो गया था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर के पास उससे किताबत हदीस का सबूत मिलता है। ताबअहु मअमर अन हम्माम अन अबी हुरैरा, अभी इस मुताबात को समझो। वहब और हम्माम दोनों भाई हैं, वहब और हम्माम ये दोनों के दोनों भाई हैं। वहब इब्ने मुनब्बा, हम्माम इब्ने मुनब्बा दोनों भाई हैं। हम्माम मजबूत रावी है, दोनों भाइयों में वहब और हम्माम में हम्माम बहुत मजबूत रावी है। हम्माम ने हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हो से जो हदीसें सुनी उसको एक कापी में लिखी थी, और उस कापी का नाम रखा था सहीफ़े हम्माम इब्ने मुनब्बा, और उसमें तकरीबन 100 हदीसें थी। तो ये बराबर समझो ताबाओ का मतलब। कौन दो भाई? वहब और हम्माम। वहब इब्ने मुनब्बा और हम्माम इब्ने मुनब्बा, दोनों में मजबूत रावी कौन है? हम्माम। उन्होंने हजरत नबी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हु से जो हदीसें सुनी वो एक कापी में लिखी। कापी का नाम क्या? सहीफा वहब इबन हम्माम इबन मुनब्बा। सहीफा हम्माम इबन मुनब्बा, उसमें कितनी हदीसें थी? 100 किस्म की रिवायत थी। वहब थोड़े से हल्के रावी है, हम्माम के भाई वहब वो भी रावी, लेकिन वो थोड़े हल्के किस्म के रावी, इसलिए मुताबात में मामर को लाए। ताबाहु मामरुन, मामर इब्ने राशिद ने मुताबात की है अन हम्माम अन अबी हुरैरा, ज्यादा सिका हम्माम भाई की बात नकल करके ये अपनी सनद को मजबूत बतला रहे हैं, गोया मामर भी हम्माम से ये हदीस नकल करते हैं। इस बात को नकल करके सनद को पुख्ता कर दिया, सनद को मजीद मजबूत कर दिया। और हम्माम की रिवायत मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक में मौसूलन ज़िक्र की गई है, और मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक ये माशाल्लाह छप चुकी किताब है। हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब आज़मी नव्वर अल्लाहु मरकदहू की तालीकात के साथ ये मुसन्नफ छपी हुई है। इसी तरीके से सहीफ़े हम्माम इब्ने मुनब्बा डॉक्टर हमीदुल्ला साहब की मेहनत और कोशिशों से वो भी छपा हुआ है। जी मसला और तर्जुमा तो चल रहा है किताबत हदीस का। इस बात ये रिवायत भी लाए हिलाए किताबत हदीस के इस बात में, लेकिन इसमें एक नया मारकतुल आरा मसला दूसरा खड़ा हो गया है। ये रिवायत हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा से है। قال ابن عباس فرماتے ہیں لما جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد سخت ہو گیا، یہ مرض الوفات کا واقعہ ہے، جمعرات کا دن تھا، کتاب المغازی میں تذکرہ موجود ہے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا تھا، تو کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد سخت ہو گیا، قال ارشاد فرمایا ائتونی بکتاب، میرے پاس کتاب لاؤ، किताब लाओ क्या मतलब, लिखने का सामान लाओ और ऊंट के शाने की हड्डी, वो चौड़ी होती है, उस पर तहरीर अच्छी खासी आ जाती है, और कलम, मेरे पास कोई लिखने का सामान लाओ। अक्तुब लकुम किताबा, मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं। ला तदिल्लु बादा, उसके बाद कभी तुम रास्ते से इधर उधर नहीं होंगे। उस तहरीर की रोशनी में जिंदगी गुजारो, तुम कभी इधर उधर नहीं होंगे, भटकोगे नहीं। बस तर्जमतुल बाप से तो ये मुनासबत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ी, जुमेरात का दिन हुजूर की शिद्दत जब हो गई तकलीफ की, हुजूर ने तहरीर का सामान मंगवाया कि भाई तहरीर का सामान लाओ, मैं तुमको कुछ बातें लिखवा देता हूँ, उन बातों की रोशनी में तुम्हारे लिए आइंदा अमल आसान हो जाएगा और तुम आइंदा जो है इख्तिलाफात में, दलाल में नहीं पड़ोगे, इसलिए लाओ तहरीर में लिखवा देता हूँ। वो या खुद तहरीर लिखवाने का दाइया जाहिर फरमाया, ये इस बात है तहरीर और किताबत हदीस के मुताल्लिक। कौल उमर, बहुत सारे लोग वहाँ मजमे में मौजूद थे जब हुजूर ने ये बात फरमाई, तो हजरत उमर ने ये राय दी, इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबहुल वजू, हुजूर को इस वक्त के ऊपर तकलीफ का गलबा है, बेहोशी हो रही है, सर का दर्द हो रहा है, बुखार की कैफियत है, बीमारी ज़्यादा है। बीमारी जब ज़्यादा है तो उस वक्त लिखवाने की ज़हमत देना मुनासिब नहीं है। जब बीमारी ज़्यादा है तो लिखवाने की ज़हमत देना मुनासिब नहीं है। ये जुमले को एक मिसाल से समझो, जैसे आपके कोई एक मुशफिक उस्ताज हो, बीमार चल रहे हो, वो उस्ताद मुशफिक कह रहे चलो किताब लाओ सबक पढ़ो। अब आप उस्ताद की बीमारी देख रहे हैं, सख्त बीमार है, फिर भी पढ़ाने का आपको एक जज्बा उनके दिल में है, तो आप क्या कहोगे, उस्ताद क्या कम पढ़ाए आज तक आपने, कितनी चीज़ें पढ़ा दी आपने, वो बहुत काफ़ी शाफी है। इस वक्त आपकी तबीयत का जो हाल है, आराम फरमाइए, इसी में जो है खैर है, जब तंदुरुस्ती होगी तो पढ़ लेंगे, बहुत पढ़ाया है, आइंदा भी जब तबीयत ठीक होगी और पढ़ लेंगे, अभी आराम फरमाइए। आपने क्या कम पढ़ाया है कि इस वक्त बीमारी में भी आप पढ़ाने की जहमत गवारा फरमा रहे हैं, ये तलामीज़ा अर्ज करते हैं। तो उनका मकसद क्या होता है तलामीज़ा का, उस्ताद की खैर ख्वाही कि उस्ताद जी इस वक्त बीमार चल रहे हैं, तकलीफ़ की शिद्दत बहुत है, और जो है इन्होंने आज तक बहुत पढ़ाया है, अभी थोड़ी तबीयत संभल जावे फिर इत्मीनान से दर्स देंगे, क्या ज़रूरी अभी इस बीमारी के हालत में भी पढ़ाना शुरू कर दे। इसलिए वो उस्ताद पर शफकत और मेहरबानी करते हुए इस तरह की दरख्वास्त करते हैं कि इस वक्त आप आराम फरमाइए, आपका पिछला पढ़ाया हुआ उसी का हम दौर और आमोख्ता कर लेते हैं, आइंदा जब मज़ीद तंदुरुस्ती हो जाएगी तब आपसे मज़ीद इस्तिफादा कर लेंगे, अभी जो है आप आराम करें इसमें खैर है। ये एक मुखलिस वफादार तालिबे इल्म का अपने उस्ताद जी के लिए रवैया हुआ करता है। बस हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा भी यही था कि इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, दर्द बहुत ज़्यादा है, बेहोशी का आलम चल रहा है, तो इस वक्त हुजूर को लिखने लिखवाने की ज़हमत ना दी जावे, इस वक्त हुजूर की तकलीफ़ का लिहाज किया जावे। गोया हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का मंशा ये था कि हुजूर जो तहरीर का सामान मंगवा रहे हैं ये बतौर वजूब नहीं फरमा रहे हैं, बतौर खैर ख्वाही फरमा रहे हैं कि लाओ तहरीर का सामान लाओ, तुम्हारी खैर ख्वाही में कुछ लिखवा दूँ जिसकी रोशनी में आइंदा तुम्हारे लिए खैर रहे। ये बतौर इरशाद और बतौर खैर ख्वाही हुजूर फरमा रहे हैं, हुजूर बतौर वजूब और बतौर फ़र्ज नहीं फरमा रहे हैं। इसीलिए हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि अभी हुजूर को तकलीफ़ देना ये ज़्यादा मुनासिब मालूम होता नहीं है, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम दिया जाए। वइंदना किताबुल्लाहि हस्बुना, हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, वो हमारे लिए बहुत काफ़ी है। यानी हुजूर ने अल्लाह के यहाँ से लाके कुरान पहुँचा दिया और कुरान में सब मौजूद है। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने किताब में कोई चीज़ छोड़ी नहीं। तिबियान लिकुल्लि शै, कुरान में हर चीज़ की वजाहत है। लिहाजा जब कुरान मजीद मौजूद है उसमें हमारे लिए रहबरी की तमाम चीज़ें मौजूद है, तो फिर इस बीमारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है, हुजूर को इस वक्त आराम दिया जा रहा है। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने ये सोचा, आपकी तकलीफ़ का लिहाज किया कि आप बहुत तकलीफ़ में हैं, आपको लिखने लिखवाने की ज़हमत नहीं देनी चाहिए, हमारी रहबरी के लिए अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है, उसमें सारी बातें काफ़ी शाफ़ी मौजूद है, लिहाजा इस दर्द के मौके पर हुजूर को मज़मून लिखवाने की ज़हमत न दी जाए। फ़ख्तलफ़ू, दो जमात हो गई, एक हज़रत उमर और उनके हामी, उनका कहना था कि इस वक्त तहरीर का सामान मत लाओ, हुजूर को तकलीफ़ मत दो। दूसरी जमात जो वहाँ पर मौजूद थी उनका ये कहना था कि नहीं, तहरीर का सामान ले आओ, हुजूर जो लिखवावे वो मज़मून लिख लिया जावे। ये दूसरी जमात की राय हो गई, दो जमातों की दो अलग अलग राय हो गई। फ़ख्तलफ़ु, दोनों जमात के अंदर आपस में इख्तिलाफ़ हो गया। जब इख्तिलाफ़ होता है तो ये कहते हैं भाई लाओ तहरीर का सामान, वो कहते हैं भाई अभी मुनासिब नहीं है, तो कुछ हल्का सा शोर जैसा हो गया, कुछ हल्का सा शोर जैसा हो गया। तो वकसुर लगा तो कुछ शोर जैसा ज़्यादा होने लगा, चू 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 चू, ये कह रहे सामान लाओ तहरीर का, ये कहते हैं मुनासिब नहीं है, तो कुछ जो है शोर जैसा माहौल हो गया। कॉल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कुमो अन्नी, खड़े हो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, ولا ينبغي عندي التنازع میرے سامنے یہ تنازع مناسب نہیں. نبی کے سامنے تم لوگ بحث کر رہے ہو تحریر لکھوائے نہ لکھوائے مناسب نہیں, جاؤ سب یہاں سے نکلو. سب کو حضور نے بھگا دیا, سب وہاں سے ہٹ گئے. بس حدیث یہاں پوری ہو گئی کہ مرض الوفات میں جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان منگوایا. حضرت عمر اور ان کے رفقا کی رائے تھی ابھی بیماری میں حضور کو زحمت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہمارے لیے بہت کافی شافی موجود ہے, بعد میں حضور کو جب افاقہ ہوگا تب دیکھا جائے گا. دوسری جماعت کا اصرار یہ رہا کہ نہیں, کتابت کا سامان لاؤ, حضور کی باتیں لکھ لو تاکہ اس کی روشنی میں آئندہ ہمارے لیے آسانیاں ہو جاوے. دونوں جماعت میں آپس میں کچھ کچھ مباحثہ ہو گیا, شور جیسا ماحول ہو گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اٹھ جاؤ یہاں سے, میری حاضری میں اس طرح جھگڑا اختلاف ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے. بات پوری, سب چلے گئے. سب چلے گئے نے شیعہ آئے, سب چلے گئے نہ شیعہ آئے نہ جھگڑے چالو ہوئے, جھگڑے وہاں نہیں ہوئے. سب کے اٹھ کے جانے کے بعد شیعہ آئے نہ جھگڑے چالو ہوئے. اب دیکھیے حدیث یہاں ختم ہو گئی. فخرج ابن عباس رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نکلے. کہاں سے نکلے؟ جہاں حضور اور حضرت عمر یہ بات چل رہی نے وہاں سے نہیں. اچھی طرح دھیان میں رکھنا, ابن عباس نکلے, ابن عباس کہاں سے نکلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں بیمار ہے, وہاں بحث ہو رہی ہے, وہاں سے ابن عباس نہیں نکلے. وہ تو بہت چھوٹے تھے, وہ تو اس مقام میں موجود بھی نہیں تھے, وہ تو اس مقام میں موجود بھی نہیں تھے. اسی لیے جہاں حضور یہ وصیت کی بات فرما رہے ہیں اور جہاں حضرت عمر اور دوسرے ساتھیوں کی دو جماعت ہو گئی, اس جگہ سے ابن عباس نہیں نکلے. ابن عباس کہاں سے نکلے؟ لمبے زمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ واقعہ بیان فرمایا. لمبے زمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ واقعہ بیان فرمایا. تو جس جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے واقعہ بیان کیا, وہاں قصہ بیان کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس نکلے. تو جہاں یہ واقعہ حضور کا ہوا وہاں سے نہیں نکلے, بلکہ بعد میں تو حضور کا انتقال ہو گیا, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے ہو گئے. اور ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک جگہ مجلس قائم کر کے وہاں یہ واقعہ سنایا. وہ مجلس حدیث, یعنی جس مجلس میں بیٹھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہ واقعہ سنایا, وہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کی جگہ سے نکلے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت بڑی دلیل. ناقل عبیداللہ ابن عبداللہ تابعی ہے, ناقل اس روایت کے عبیداللہ ابن عبداللہ تابعی ہے. ظاہر بات ہے کہ تابعی ناقل اور سنا رہے ہیں حضرت ابن عباس, یہ دلیل ہو گئی کہ یہ حدیث بیان کرنے کی جگہ سے نکلنا مراد ہے, نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے نکلنا مراد ہے. تو حضرت ابن عباس حدیث سنا کر کے نکلے اور فرمایا اِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةَ مصیبت پر مصیبت مصیبت پر مصیبت مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَيْنَ كِتَابِهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مضمون کے درمیان میں جو حائل ہو گئے حائل ہو گئے وہ ایک مصیبت مصیبت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مضمون لکھوانا چاہتے تھے اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے تھا مضمون لکھوا لینے دینا تھا تاکہ روافض کو فتنہ کرنے کا ہنگامہ آرائی کرنے کا موقع ہی نہ ملتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس لمبے زمانے کے بعد یہ واقعہ سنا کر کے افسوس کر رہے ہیں کاش کے حضور کو وہ تحریر لکھوانے دی لکھوانے دینے کا موقع دیا گیا ہوتا تو اختلاف ہی ختم ہو جاتا اور کسی طرح کا روافض کو ہنگامہ اور فتنہ کھڑا کرنے کا موقع ہی نہ ملتا کتنا اچھا ہوتا کہ صاف صاف مضمون آ چکا ہوتا یہ ہو گئی روایت تو روایت شریف سمجھ میں آ گئی امام بخاری تو یہ روایت کیوں لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں کتابت حدیث کلام میں مضمون لکھوا دیتا ہوں اس کا حکم دیا اس سے نفس کتابت حدیث کو مشروع اور ثابت کرنا مطلب تھا دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حضور لکھوانا چاہتے تھے حضرت عمر نے شفقتاً عرض کیا اس وقت آپ نہ لکھوائیں آپ بیمار ہیں بعد میں لکھوا دیں گے موقع آپ کو ابھی آپ تندرستی کا زیادہ اہم معاملہ ہے آپ اپنی طبیعت کی فکر کیجئے آپ ابھی لکھوانے کی فکر نہ کیجئے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا تھا یہ سیدھی سادھی بات ہے اب اس کے اوپر روافض نے ہنگامے کھڑے کیے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر نے گستاخی کی حضور لکھوانا چاہتے تھے اور عمر نے لکھوانے نہیں دیا ایک تو حضرت عمر پر گستاخی رسول کی تہمت لگائے روافض نے دوسری بات کیا کہی ان لوگوں نے روافض نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت بلا فصلہ لکھوانا چاہتے تھے لیکن حضرت عمر نے بات ٹلوا دی حضور کیا لکھوانا چاہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصلہ وہ بات حضرت عمر نے ٹلوا دی یہ الزام ہے دنیائے روافض کی طرف سے اسی لیے اس حدیث کے بارے میں چند اہم باتیں ذہن میں رکھ لو نوٹ کر لو یہ بہت کام کی اہم ترین بحث ہے اس کا عنوان ہے حدیث قرطاس اس حدیث کا عنوان کیا رکھا جاتا ہے حدیث قرطاس قرطاس کا معنی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم منگوایا کہ لاؤ میں تم کو کچھ ضروری باتیں نوٹ کروا دیتا ہوں یہ بخاری میں کئی جگہوں کے اوپر اس روایت سے سابقہ پڑتا ہے بڑی بڑی باتیں ذہن میں رکھو نمبر ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت پر تحریر لکھنے سے روکا یہ محبت کے تقاضے تھے تھا राहत पहुंचाने के तकाजे से था। और ये भी एक तकाजे की बात है कि बड़े लोग जो बात कहे उस पर जू का तू अमल न किया जावे। बस मर्तबा बड़ों की बात पर जू का तू अमल न किया जावे, ये भी मोहब्बत का तकाजा होता है, राहत का तकाजा हुआ करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इतने सख्त बीमार, इतना सख्त दर्द कि उसमें कहाँ हुजूर अब तहरीर लिखवाने की ज़हमत करेंगे। इसीलिए उस वक्त का तकाजा ये कि हुजूर चाह रहे हैं लिखवाने के लिए, फिर भी न लिखा जा रहा है, चाहत के बावजूद न लिखा जा रहा है। तो हज़रत उमर ने मोहब्बत के तकाजे पर अमल किया, हुजूर को राहत पहुंचाने के तकाजे पर अमल किया, जिसे बाज़ मर्तबा बाज़ बड़े बीमार होते हैं फिर भी वो चाहते हैं कि भाई इबादत करें, रोज़ा रखें। तो रमज़ान में उनके नहीं आपको खाना ही पड़ेगा, अरे भाई रमज़ान है रोज़े रखने दो, नहीं रोज़े आपको नहीं रखने के, खाओ। अब आप क्या कहोगे कि बड़ों की गुस्ताखी हो रही है, उनको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है? अरे नहीं, उन पर शफ़क़त है, कभी आप बीमार चल रहे हैं बाद में कज़ा कर लेना। अल्लाह ही ने तो फरमाया है फमन काना मिनकुम मरीदन अव अला सफर फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, बाद में कज़ा कर लेना, अभी खाओ, अभी आपको तंदुरुस्ती की ज़रूरत है। तो बड़े के वे रोज़े रखने, फिर भी हम उनकी बात पर अमल न करके बड़ों को खिलावे बैठ कर गए, तो ये उनके साथ मोहब्बत का तकाजा, ये इनके साथ अदब का तकाजा है, उनकी सेहत का लिहाज का तकाजा है, जो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने अंजाम दिया। समझ में आई पहली बात? दूसरी बात समझ में, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का तहरीर लिखने से मना करना, इसको रवाफिस गुस्ताखिये रसूल पर महमूल करते हैं। आइए, ऐसा वाकया हज़रत अली से भी हुआ है, सुलह हुदैबिया का मौका है, जानिबैन से सुलह लिखी जा रही है, तहरीर लिखना शुरू हुई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से मक्का के मुशरिकों के साथ सुलहनामा। अब जैसे ही हज़रत अली किताबत कर रहे हैं, सुलहनामे में लिखवाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मक्का वाले क्या कह रहे हैं? आपको जो रसूलुल्लाह हम माने तो इख्तिलाफ काएगा, सारा इख्तिलाफ तो रसूलुल्लाह मानने के मसले में है, इसीलिए तहरीर में रसूलुल्लाह कैंसल करो और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और अहले मक्का यूं लिखो। आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह माने तो फिर झगड़ा ही खत्म, हम आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते, इसीलिए तो सारे झगड़े हैं। अब हुजूर ने फरमाया हज़रत अली को, अली रसूलुल्लाह मिटा और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला करो। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला ने क्या कहा? वल्लाहि ला अमहुका, अल्लाह पाक की कसम मैं आपके नाम से रसूलुल्लाह नहीं मिटाऊंगा, मैं नहीं मिटाऊंगा आपके नाम के आगे से रसूलुल्लाह। साफ लफ्जों में हज़रत अली ने कह दिया, क्या इसको गुस्ताखी हुजूर की माँ कहोगे? कि हज़रत अली ने हुजूर की गुस्ताखी की, हुजूर ने खुद फरमाया अली रसूलुल्लाह मिटाओ, हज़रत अली ने कसम खा के कहा नहीं मिटाऊंगा, तो अपने बड़ों के साथ गुस्ताखी हुई क्या? ये तो अदब है, कि हुजूर आप हकीकत में रसूलुल्लाह हो, आपके नाम से रसूलुल्लाह लगा हुआ है, वाकई रसूल हो, उसको मिटाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो जिस तरीके से हुदैबिया में रब्जे रसूलुल्लाह हजरत अली का न मिटाना ये गुस्ताखी नहीं है, इसी तरह हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का तहरीर न लिखना ये भी गुस्ताखी नहीं है। वरना अगर गुस्ताखी मानने जाओगे तो नऊज़ु बिल्लाह हजरत अली को भी गुस्ताख कहना पड़ेगा, वो तो फिर हुजूर का मौजिजा जाहिर हुआ। उसने कहा लाओ कागज के लाओ, कहा है, हुजूर ने खुद मिटा दिया और वहां ठीक कर दिया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कर दिया, मौत बतौरे मौजिजे के। तीसरी बात समझो भाई, फिर तो जमीए अहले बैत नबुवत को गुस्ताखे रसूल मानना पड़ेगा। जमीए अहले बैत रसूल को गुस्ताखे रसूल मानना पड़ेगा। कैसे? अरे वही लुदूद वाला वाकिया बुखारी किताबुल मगाजी के अंदर मौजूद है। लुदूद वाला वाकिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार। अब अरब में एक रिवाज था इलाज मुआलजे का, लुदूद का, और दवा टपकाने वाली, दवा चढ़ाने वाली, बोतल चढ़ाने वाली तदबीर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लुदूद की बात हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया, भाई मुझे लुदूद मत करो, ये इलाज मुझे करने की जरूरत नहीं, मुझे इलाज मत करो। तो अहले बैत क्या कह रहे हैं? ये तो बीमार को दवा से कराहत होती ही होती है, बीमार का खुशी से दवा पीता है। कराहियतुल मरदालित तदावी, लिहाजा हुजूर न चाहते हुए भी लुदूद किया, मुंह में दवा डाल दी। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफाका हुआ, हुजूर ने फरमाया मैंने मना किया था, फिर भी तुमने सब ने मिलके लुदूद किया था ना, सबको लुदूद कराओ, सबको लुदूद कराओ, बदला। अब क्या यहां पर पूरे अहले बैत नबुवत को नाफरमान और गुस्ताख कहोगे? तो हुजूर ने मना किया फिर भी उन्होंने लुदूद किया, तो अगर ना कहने के बावजूद कोई काम किया जाए उसको अगर गुस्ताखी ही मानना है तो क्या पूरे खानवादे रसूल को आप यूं कहोगे कि सब ने गुस्ताखी का इर्तिकाब किया? उसमें तो पूरा घराना आ गया, जिनको भी तुम लोग अहले बैत नबुवत कहते हो और शिये जिनके तकद्दुस और तहारत और अल्लाह जाने क्या क्या बतलाते हैं वो सब उसमें शामिल हो गए, तो हम क्या कहेंगे? यही कहा जाएगा कि ये तो बाज मरतबा बड़ों की भलाई चाहते हुए बड़ों के मंशे के खिलाफ कुछ करना पड़ता है, बड़ों की भलाई चाहते हुए बड़ों के मंशे के खिलाफ कुछ करना पड़ता है, उसको बदनीयती से ताबीर नहीं किया जाता। बदनीयती नहीं थी लुदूद कराने में भी घर वालों की, उन्होंने भी हुजूर की खैर ख्वाही में लुदूद किया, कोई बदख्वाही उनके अंदर नहीं थी। तीन मिसालें हो गई भाई, तीन हो गए, चौथा एक वाकिया देखो। ये रिवायत मुस्नद अहमद में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया अली कलम कागज लेकर आओ, मैं तुमको कुछ बातें लिखवा दूं। ये तो डायरेक्ट हजरत अली को हुजूर ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत। अली कलम कागज ले आओ, मैं कुछ लिखवा दूं। तो हजरत अली ने क्या अर्ज किया, आपकी तबीयत पर बोझ होगा, हुजूर आप बीमार चल रहे हो, अभी आपकी तबीयत के ऊपर बोझ होगा, अभी लिखवाना मुनासिब नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर किसी वक्त देखा जाएगा। देखिए मुस्नद अहमद की ये रिवायत तो इतनी सरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट हजरत अली को कहा, अली कलम कागज लाओ, मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ। तो हजरत अली ने क्या अर्ज किया, हुजूर आपकी तबीयत पर बोझ होगा, इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में किसी वक्त पर देखा जाएगा। तो क्या यूं कहोगे कि नऊज़ुबिल्लाह हजरत अली ने गुस्ताखी की हुजूर की, जो तुम्हारे तान हजरत उमर पर, इस वाक्य की वजह से वो तान तो हजरत अली पर लौट रहे हैं। इसीलिए हम यही कहेंगे कि हजरत अली ने भी कागज नहीं लाके दिया, हजरत उमर ने भी कागज लाके नहीं दिया, दोनों हुजूर के मुखलिस हैं, दोनों हुजूर की भलाई चाहने वाले, दोनों हुजूर की राहत चाहने वाले, दोनों बीमारी में हुजूर को तकलीफ देना नहीं चाहते, ना अली गुस्ताख है ना उमर गुस्ताख है, दोनों ने हुजूर की राहत का लिहाज किया। एक और दलील समझो अच्छी तरीके से, हुजूर क्या लिखवाना चाहते थे इस तहरीर के अंदर, वो मसले को अपने लेते हैं, क्या लिखवाना चाहते थे। तो रवाफिस कहते हैं हजरत अली की खिलाफत बिला फसल लिखवाना चाहते थे। तो हम अर्ज करेंगे कि दलील सबूत लाओ ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफत बिला फसल लिखवाना चाहते, दलील लाओ दलील। ज़ालिका कौलुहुम बिअफवाहिहिम, ये जबानी दावा है, दलील तो कहीं है नहीं इनके पास, कहीं दूर दराज से भी कोई ज़ईफ रिवायत भी दलील हो तो लाके दिखावे शिये लोग। कि इस कागज कलम मंगवाने का मंशा हजरत अली की खिलाफत बिला फसल लिखवाना था, इस पर रवाफिज दूर दराज से भी कोई एक रिवायत लाके साबित कर देवे, 1450 साल में तो ला नहीं सके। तो फिर इसको कहा जाएगा ज़ालिकुम कौलुहुम बिअफवाहिहिम, मुंह से बंडल मारे और कुछ नहीं है। हम क्या कहते हैं कि हुजूर क्या लिखवाना चाहते थे, मुख्तलिफ एहतमालात हैं, उसमें एक कवि एहतमाल ये हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत लिखवाना चाहते थे। हम अहले सुन्नत व जमात कहते हैं कि हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत बिला फसल लिखवाना चाहते थे और मजीद तरतीबुल खुलफा लिखवाना चाहते थे। और हमारे पास दलील है इस मौजू पर कि हुजूर खिलाफत सिद्दीकी लिखवाना चाहते थे। मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, अन यहया इब्न सईद قال سمعت القاسم ابن محمد قال قالت عائشة وراسا, हुजूर की बीमारी का किस्सा मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है, जिसमें हुजूर को दर्द हुआ, हुजूर को तकलीफ हुई, اس بیماری کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا, کیا فرمایا؟ عائشہ میرا ارادہ ہے ابو بکر صدیق کو بلا بھیجو, ان کے بیٹے کو بھی بلا بھیجو, میں کچھ لکھوا دوں, کچھ وصیت کر دوں, کچھ تاکید کر دوں, تاکہ آئندہ کوئی تمنا کرنے والا خلافت کی تمنا نہ کرے. میں صراحتن کہہ دوں صدیق اکبر کے بارے میں, تاکہ آئندہ کسی کے دماغ میں لالچ ہی نہیں آئے کہ مجھے خلافت ملے, میں خلافت کا حقدار بنوں. پھر اللہ تعالی اور ایمان والے صدیق کے علاوہ کسی کی خلافت کو گوارائی نہیں کریں گے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منشا مبارک ظاہر فرمایا تھا, اور جس میں صاف اشارہ فرما دیا تھا کہ میں ابوبکر صدیق کی خلافت کی صراحت کر دوں تاکہ کسی کو آئندہ خلافت کے معاملے کی آرزو, توقع, تمنا, خواب, وچار, سوچ باقی نہ رہے. یہ بخاری ثانی میں بھی یہ روایت موجود ہے, جیسا کہ مسلم شریف میں ہے بخاری ثانی میں بھی موجود ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک اگر کچھ لکھوانے کا تھا تو وہ حضرت ابوبکر کی صدیق کی خلافت کے معاملے کو لکھوانے کا آپ کا منشا مبارک تھا, یہ بات واضح اور ظاہر ہوتی ہے. چھٹی دلیل آئے گی, اب کون سی چھٹی دلیل؟ اچھا, جمعرات کو حضور نے منع کیا, جمعرات کو حضور نے کاغذ میں قلم منگوایا, حضرت عمر نے کہا نہیں حضور ابھی نہیں, بعد میں دیکھیں گے. یہ واقعہ کب کا ہے؟ جمعرات کے دن. اور وفات اقدس کب ہے؟ پیر کے دن, جمعہ, شنی, روی, سوم, کتنے دن, بیچ میں چار چار دن آئے. اگر کوئی ایسا اہم ترین واقعہ حضور لکھوانا چاہتے تھے اور اس وقت چلو بات ٹل گئی, ایک جماعت کہتی ہے لکھواؤ, دوسری جماعت کہتی ہے مت لکھواؤ, اس وقت بات ٹل گئی, تو باقی چار دن حضور کے پاس تھے, تب کیوں خلافت علی حضور نے نہیں لکھوائی؟ اگر اتنی اہم بات لکھوانی تھی تو جمعرات کو بات ٹل گئی, باقی چار دن کہاں گئے؟ بعد میں بھی نہیں لکھوایا کیا؟ حضرت عمر باقی چار دن ہر ہر منٹ وہاں رہے مسلط, نہیں حضور لکھوانے ہی نہیں دیں گے. حضرت عمر اپنے کام میں نکل گئے, وہاں بھی گھر میں دو رائے ہو گئی, سب لوگوں کو حضور نے بگا دیا, بات ختم ہو گئی. کوئی ایسی بات ہوتی تو اہل بیت کو پرائیویٹ میں کہتے چلو اب عمر نہیں ہے نا, ہاں عمر گئے, اب لے آؤ جاؤ میں لکھوا دیتا ہوں. چار دن میں کیا خلوت کے موقع نہیں ملے؟ اگر حضور کو اہل بیت کے بارے میں کچھ لکھوانا تھا, حضرت علی کی خلافت کے بارے میں کچھ لکھوانا تھا, تو بعد میں چار چار دن کا موقع ملا ہے, اور ہر وقت حضرت عمر تھوڑی وہاں موجود تھے کہ جو تحریر سے روک رہے تھے. اسی لیے حضرت عمر پر ایک گناؤنا الزام ہے, حالانکہ ان چار دنوں میں حضور نے بہت کچھ ارشادات فرمائے, نماز کی تاکید فرمائی, آنے والے وفود کا استقبال کرنے کی تاکید فرمائی, غلام باندیوں سے اس نے سلوک کے بارے میں ارشاد فرمایا, جیسے اسامہ کی روانگی کی باتیں فرمائی, بڑی اہم اہم باتیں جمعرات کے بعد فرمائی ہے. تو دوسری بہت ساری اہم باتیں جمعرات والے واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اگر کوئی ایسی اہم بات باقی رہ جاتی تھی تو بعد میں لکھوا لیتے, لیکن حضور نے چار چار دن تک نہیں لکھوایا. सातवीं दलील समझो। ये जो बात लिखवाने की कोई बात थी, अगर उसका ताल्लुक तबलीगे दीन से था, शरीयत के अहकाम से था, और अल्लाह के यहां से उस बात को पहुंचाना हुजूर के लिए जरूरी था, तो हजरत उमर क्या सारा अरब भी एक तरफ हो जाता, हुजूर उस बात को पहुंचाने से रुकने वाले नहीं थे। अल्लाह के यहां से अगर कोई बात पहुंचानी लाजमी जरूरी होती तो हजरत उमर क्या सारा अरब भी एक तरफ हो जाता, हुजूर रुकने वाले नहीं थे। इसलिए कि नबी की शायन शान है ही नहीं कि अल्लाह के यहां से आई हुई बात को वो रोके रखे और न पहुंचावे। किसी नबी की शायन शान, नबी तो हर हर बात जो अल्लाह के यहां से आई पहुंचा के रहेंगे, एक बात में भी कोताही नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसी बात उस तहरीर में लिखवानी थी जिसका तबलीगे दीन से लाजमी हिस्सा, लाजमी तबलीगे दीन का हिस्सा था, तो हजरत उमर क्या सारे मदीना वाले एक तरफ हो जाते तो अभी हुजूर रुकते नहीं और जरूर पहुंचा के रहते। मालूम हुआ ये कोई इतनी अहम और जरूरी बात नहीं थी। जरा याद करो ना, शुरू में इस्लाम की दावत देना शुरू किया, हजरत उमर भी नहीं थे, तब किसने हुजूर को रोका ईमान की दावत से? सारा मक्का दुश्मन, सारा अरब दुश्मन, तभी हुजूर ने अकेले दीन की दावत दी कि नहीं दी? उमर तो 40वें नंबर पर ईमान लाए, अकेले हुजूर दीन की दावत दे रहे, लाए खाफून लौमत लाइम, सारी मुखालफतें बर्दाश्त करके दीन की दावत दे रहे। तो आज एक उम्र की वजह से हुजूर घबरा जाएंगे, रुक जाएंगे, जब उम्र भी नहीं सारा मक्का दुश्मन, तब आपको तबलीगे दीन से कोई नहीं रोक सका, तो क्या आज उम्र की वजह से हुजूर एक तहरीर से रुक जाएंगे? यह हरगिज नहीं हो सकता। और वाकियात मौजूद है कि हजरत उमर की बात का भी हुजूर ने लिहाज नहीं फरमाया, जब मौका आया तब। कौन सा मौका? पीछे एक रिवायत आपने पढ़ी, हजरत हातिब इब्ने अबी बलता रदियल्लाहु ताला अन्हो का वाकिया हुआ, तो हजरत उमर हुजूर को कह रहे हैं कि हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं, कत्ल कर दिया जाए हातिब इब्ने अबी बलता। बतलाओ हुजूर ने उमर की बात मानी कि नहीं मानी? नहीं मानी, रद्द कर दिया हजरत उमर की बात को। तो हजरत उमर की बात जब कभी कोई नामुनासिब सामने आई, हुजूर ने रद्द फरमा दी, नहीं मानी हजरत उमर की बात। जैसे हजरत हातिब इब्ने अबी बलता के वाकिए में उन्होंने कहा हुजूर मुझे इजाजत दो, मैं इनकी गर्दन उड़ा दूं, हुजूर ने नहीं उड़ाने दी, हजरत उमर की बात रद्द कर दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हो की बात को रद्द किया है, इसीलिए ये नहीं कह सकते कि हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हो के दबाव में आकर के ये तहरीर नहीं लिखी गई और खिलाफत बिला फसल का मजमून बाकी रह गया, ये सरासर गलत बात है। उसके अलावा हमारे पास बहुत बड़ी दलील है, उस जमाने में इमामत सुगरा और कुबरा दोनों एक साथ मनसब थे, मस्जिद की नमाज हुकूमत की जिम्मेदारी, इमामत सुगरा इमामत कुबरा दोनों एक साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब हुकूमत बादशाह और साहिब शरीयत नबी, ये जबूर में भी लिखा हुआ था, तो हुजूर ने जिंदगी के आखिरी दिनों में अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला दिया, अबू बकर नमाज पढ़ाओ मैं भी मारो, ये साफ इशारा दे दिया कि जो नमाज की इमामत करावे वही जो है हुकूमत की बागडोर भी संभाले, साफ इशारा दे दिया। अरे 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ, अबू बकर सिद्दीक को अमीरुल हज बना के भेजा, जाओ अबू बकर हज पढ़ा गया। अपनी जिंदगी में मनसबे अमारत हुजूर सौंप रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक को, कितनी सरीह दलीलें हैं कि मेरे बाद यही मनसबे खिलाफत को संभालेंगे, एकदम साफ साफ इशारे मौजूद है। पहले क्या था, मस्जिद नबवी में सबके मकान के दरवाजे खुलते थे, मस्जिद के इर्द गिर्द मकान का सिस्टम ऐसा था, सबके बाड़े के दरवाजे मस्जिद नबवी में खुलते थे। फिर एक मौका ये आया कि हुजूर ने सबके दरवाजे बंद करा दिया, आगे से आओ, वो जो डायरेक्ट घर में से मस्जिद, मस्जिद से घर और मस्जिद के साथ ज्वाइन कर दिए थे बंद, सबके दरवाजे बंद, 2 दरवाजे बाकी रखे, एक अपना और एक अबू बकर सिद्दीक का। ये भी एक सरीह दलील थी कि मेरे बाद मनसबे अमारतों खिलाफत अबू बकर सिद्दीक के पास होगा, सरीह दलील थी, इसलिए उनका दरवाजा बाकी रखा और जो है सबके दरवाजे बंद करवा दिए गए। तो ये जो है ना सब फितने खड़े किए हैं रवाफिज की तरफ से मसले खिलाफत के अंदर, और कुछ नहीं है। हकीकत हाल ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला की खिलाफत के वाज़े इशारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादे दिए थे, और वो तहरीर हजरत उमर ने नहीं लिखने दी, शफकतन मोहब्बतन हुजूर की बीमारी का लिहाज करते हुए, उसमें कोई जो है अली की खिलाफत को ख़त्म करवाना मकसूद नहीं था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का अपना मकाम है, मनसब अमारत के लिए सिद्दीक अकबर का एक मुस्तकिल मकाम है, एकदम साफ सुथरी बात है। ये शियों के खड़े किए हुए सब धकोसले हैं, हंगामे बाजिया है और कुछ नहीं है।